ओम शांति। हम सब के बीच में एक बहुत सुंदर कोहिनूर हीरा बाबा ने बाबा के इस कर्म भूमि तप भूमि में हम सभी के बीच में भेजे हैं, तो हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम श्रद्धेया, परम तेजस्वी, ज्ञान सूर्य बन प्रकाश फैलाने वाली बाबा की राइट हैंड ज्ञान गंगा अपनी शांत मुख मंडल मधुर वाणी में अपने अनेकों आत्माओं को जीवदान देने वाली सरल स्वभाव संतुष्टता की चैतन्य देवी माँ संतोषी आदरणीय संतोष दीदी जी को हम सभी हमारी ओडिशा की परंपरा तो समस्त माता मान को मु अनुरोध करी मुखर बाजा द्वारा दीदी जी को स्वागत। दीदी, ये हमारे ओडिशा में कोई भी देवी का आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसकी वंदना ये मुख के आवाज के द्वारा जरूर करते हैं, तभी हम शुभ मानते हैं। तो ऐसे दीदी जी, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, साकार बाबा का दिव्य व्यक्तित्व फरिश्ता रूप देख के बाबा की रूहानी स्नेह में आकर्षित कर लिया, और बाबा की पहली मुलाकात में ही आपने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन बनाना है तो ऐसा ही श्रेष्ठ बनना है, और बाबा की आज्ञाओं पर चलकर दूसरों का भी जीवन को ऊंच बनाना है। आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवार्थ अर्पित कर लिया। अपना जीवन न सिर्फ आपने अनेकों को ईश्वरीय रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। 1955 में मुंबई के सायन सेवा केंद्र पर आपने सबसे पहले बाबा का परिचय मिला, और 1944 पंजाब में जन्म हुआ आपका। तो मिलनसार स्वभाव और हर्षित मुख, लॉ एंड लव का बैलेंस रखने वाली और नेतृत्व कला में बेहद निपुण है। 1964 में मुंबई में मुमा के साथ और 1965 में बाबा से मिलने का अवसर मिला है, जब बाबा के निमंत्रण पर आपने पांडव भवन सबसे पहले बाबा से मिलने के लिए आए थे, और जब बाबा को देखे और बाबा सचमुच निराकार कैसे साकार में आते हैं, ये जो संदेह था वो पूरा बाबा को देखने के बाद आपने पूरा प्रभावित हो गए, और ब्रजेंद्रा दादी जी के सानिध्य में रहने का शुभ अवसर मिला, और वर्तमान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अब जोनल हेड भी है, और 1,00,000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके पवित्र पालना में रोज राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे एक मर्यादा पुरुषोत्तम देवी आज हमारे बीच में है, तो आज का जो विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण जीवन, तो उस विषय पर प्रकाश डालेंगे। जो अपना जीवन को ही ऐसे प्रेरित किए हैं, उनके जीवन ही हम सभी के लिए प्रेरणा का उच्च है। तो दीदी जी के लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ, जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्होंने ऐसा जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम कहिनूर हीरा इस भट्टी के बीच में पधारे हैं, इस भट्टी के बीच में है पधारे हैं। तो जोरदार करतल ध्वनि से फिर से दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है, पर आज के विषय पर मार्ग प्रदर्शन करेंगे आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के हम बच्चों को विश्व में से कोने कोने से चुन करके अपना बनाया, अपना बना करके हमारी जीवन जो है वो भोगी से योगी जीवन बना दिया। गोद का बच्चा बना करके बेफिक्र बादशाह बना दिए। अभी हम देखते हैं हरेक जो कुल होता है, हरेक कुल की अपनी अपनी मर्यादा होती, हर व्यक्ति को अपनी कुल की मर्यादा के ऊपर चलना होता है। अगर कोई कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो कुल वाले उनको कुल में से निकाल देते हैं, वो अकेले बन जाते हैं, उनके साथ लेने देने का कनेक्शन नहीं रखते हैं और बेचारे उदास हो जाते हैं, ना उनको किसी का सहयोग मिलता है ना कुछ, अकेली जीवन हो जाती। तो वो हो गई लौकिक कुल की मर्यादाएं, हरेक की अपनी अपनी अलग अलग है। परंतु हमारी सिर्फ एक मर्यादा नहीं है, एक कुल की बात नहीं, हमारे दो कुल की बात। संगम युग पर ईश्वरीय कुल और दैवी कुल, इन दोनों कुल की मर्यादाओं के ऊपर चल करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते। क्योंकि आप सबको मालूम है डिग्री तो नई दुनिया में मिलती है, पढ़ाई यहां होती, मर्यादा यहां पालते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम वहां गाई जाती। तो आज हम देखेंगे कि ये जो दो कुल की मर्यादाएं हैं ये कौन सी है और हम इस पर कहां तक चलते हैं, हमें कहां तक चलना है। अगर कोई इन मर्यादाओं का उल्लंघन करते, ईश्वरीय कुल या दैवी कुल की मर्यादा का उल्लंघन करते, यहां कभी भी कोई किसी को निकालता नहीं है, वो स्वतः ही इस कुल में से निकल जाते, निकालना नहीं पड़ता है, खुद ही निकल जाते हैं, खुद ही वापस क्षुद्र कुल में चले जाते हैं। उनको कौन धक्का देता है, कौन उनको नहीं आने के लिए कहता है? परंतु उनकी हिम्मत ही नहीं होती इस धरणी के ऊपर पैर रखने की, क्योंकि कुल की मर्यादा को छोड़ा तो सब कुछ छोड़ जाता। हम बाबा की जीवन कहानी को देखते हैं, साकार बाबा ने लौकिक जीवन में भी अपने कुल की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। अलौकिक जीवन तो छोड़ ही दो, परंतु लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं कि बाबा जो वैष्णव पंथी था उसने अपने वैष्णव कुल की कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, एकदम प्योर वेजिटेरियन, कभी भी शराब या कबाब किसी भी चीज का कभी सेवन नहीं किया, शुद्ध खाने का सेवन नहीं किया। बाबा का बड़ा जवाहरात का व्यापार चलता था, बड़े बड़े राजाएं लोग आते थे, उदयपुर के, जयपुर के, इस साइड के भी राजाएं कराची में आते थे बाबा के। क्योंकि इन राजाओं का एक नियम होता था कि जब भी उनका राज दरबार लगेगा तो पुराने गहने नहीं पहनेंगे, आभूषण नहीं पहनेंगे, हर दरबार में उनको नए आभूषण चाहिए, नई डिजाइन चाहिए। और बाबा नई नई डिजाइन की इन्वेंशन करने में नंबर वन था, इसीलिए इतने दूर से आकर के बाबा से आकर के वो ज्वेलरी लेते थे। बाबा की दिल बहुत बड़ी थी, दरिया दिल था लौकिक में भी, क्योंकि वो श्री कृष्ण की फर्स्ट नंबर की आत्मा, उसके अंदर वो संस्कार भरे हुए थे जिसके कारण बाबा जो भी आते थे उनकी बहुत खुले दिल से स्वागत करते थे, बहुत खुले दिल से उनकी खातरी करते थे। आप लोग सभी हिंदी समझ रहे हैं? जो नहीं समझते हाथ ऊपर करो। उन्होंने ये भी नहीं समझा होगा मैंने पूछा अगर तो बाबा बहुत खातरी करता था। परंतु ये जो राजाएं लोग थे, ये तो शराब पीने वाले, कबाब खाने वाले, मांस मदिरा वाले, तो इनको बाबा से बड़ा प्यार था। हंसते थे, कहते थे दादा आपकी पार्टी तो फीकी फीकी रही, क्योंकि उनको तो ना शराब मिलता था ना कबाब मिलता। तो बाबा उनको कहता था, देखो तुम मेरे को क्या देते हो, तुम मेरे को कागज के नोट देते हो और मैं तुमको अपने सच्चे हीरे देता हूं, क्या उन कागज के नोटों के पीछे मैं मेरा धर्म छोड़ दूं? अरे धर्म छोड़, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, मरना भी पड़े तो अपना धर्म नहीं छोड़ना। धरत माना धरनी के ऊपर गिरना, मन मरना, मरना भी पड़े तो भी धर्म, धर्म माने धारणाएं, वो हम नहीं छोड़ सकते। तो आप समझ सकते हैं जो लौकिक जीवन में इतना मर्यादा वाला था, उसने अलौकिक जीवन में कौन सी मर्यादा को उल्लंघन किया। तो शिव बाबा ने आकर के जो मर्यादाएं हमको खींच के दिया, उसका पूरा पूरा पालन बाबा ने करके हमको बताए। शिव बाबा ने जो श्रीमत दिया, वो श्रीमत ही ईश्वरीय कुल की मर्यादाएं। बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सबके लिए श्रीमत दी हुई है। उस श्रीमत पर वो पूरा पूरा चला और प्रैक्टिकल में हमको बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो कलप पहले की यादगार रामायण है, उसमें बताते हैं कि सीता ने कौन सी भूल किया। सीता ने राम के पीछे अपना राजभाग छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, राजा ही छोड़ दिया और जंगल में बिगर चप्पल घूमती रही बिचारी, कपड़े पहन के कौन से साथे। परंतु फिर भी उसको रावण की जेल में जाना पड़ा। कारण एक ही उसने भूल किया, जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन की। क्यों उल्लंघन किया? क्योंकि सूक्ष्म में उसके अंदर सोने का ऐसा आकर्षण बना हुआ था कि ये सोनी हरण जो है इसको मार के ला, नहीं तो जिंदा ला परला तो। और उसकी इस वीकनेस का रावण ने पूरा पूरा फायदा ले लिया और वो सीधा सोनी दुनिया में चली गई। राम ने भी समझा सोने का मेरे से ज्यादा आकर्षण है, तो जा उधर, उधर जाके बैठना पड़ा उसको। है हम लोगों की ये यादगार, अगर किसी भी बारे में थोड़ा भी हमको आकर्षण है तो पुरानी दुनिया में जाना पड़ेगा। उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। लक्ष्मण रेखा माना लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेखा। हमारा जो लक्ष्य है कर्मातीत संपूर्ण बनना, उस लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेखा का उल्लंघन करने के कारण उसको रावण की जेल में बैठना पड़ा। इसीलिए हमें कुछ भी हो जावे, हमें कभी भी अपनी ईश्वरीय मर्यादाएं मनसा वाचा कर्मणा अमृत वेले से लेके रात को सोने तक बाबा ने जो रेशाएं खींच के दिया है, उसका हमको कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने मनसा के लिए कौन सी रेशा खींच के दी? बाबा ने हमको मनसा के लिए मनमना बनने की रेशा खींच के दिया। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। बाबा के साथ पूरे पूरे वफादार बन के चलना सिखाए। हम सब आत्माएं उसकी सजनियां हैं, वो हमारा साजन है। उसके बगैर हमारी कहीं भी बुद्धि नहीं जावे। बाबा ही हमारा संसार, इस फरमान का पालन करने से बुद्धि का भटकना बंद हो गया, बुद्धि को ठिकाना मिल गया। मनमना भाव की स्थिति में रहने से मन शांत और आनंदमय बन गए। व्यर्थ संकल्प उठाने के बजाय बाबा ने हमें मन के लिए मर्यादा खींच के दिया। स्वचिंतन करो, परमात्म चिंतन करो, ज्ञान का मनन और चिंतन करो, खुद के लिए स्वचिंतक बनो, स्वचिंतन करो और सबके लिए सब शुभ चिंतक बन के चलो। देखो मन को बाबा ने कैसा बांध दिया, बाबा ने कैसी लकीर खींच के दी। नहीं तो मन भागता था, पर चिंतन करता था, पर दर्शन करता था, परंतु बाबा ने उससे छुड़ा के हमें स्वचिंतन करना सिखा दिया, परमात्म दर्शन करना सिखा दिया, ज्ञान का मनन और चिंतन करके अपने को शक्तिशाली बनना सिखा दिया। अगर हमारा मन सिवाय बाबा के और भी कहां जाके लगता है, उसकी तुरंत सजा मिलती, बाबा नहीं देता है। ड्रामा प्लान अनुसार तुरंत सजा मिलती है। बाबा के द्वारा जो सुख और शांति की सप्लाई हमारे को मिलती है, वो बंद हो जाती, शांति गायब हो जाती। हमारा जो गीत है, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा, पाने वाली स्थिति नहीं होती है, खोने वाली स्थिति होती है। पता नहीं आज हमारे मन को क्या हो गया, पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया, क्या हुआ, उल्टा सोचेंगे तो क्या होगा मन को, खुद को ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। इसीलिए हमको बाबा ने जो हो ये मर्यादा खींच के दिया है मन के लिए, उससे हमें कभी भी बाहर नहीं जाना है। हमें एक नामी बन करके चलना है, एक का ही नाम। पिता व्रता बन के चलना है, पति व्रता बन के चलना है। वो हमारा पिता भी है और पति भी है आत्माओं का, मेल फीमेल की बात नहीं है। इसीलिए हमारी सदैव हमारी मन हमारी बुद्धि उसके साथ लगी रहे, इसका हमें ध्यान दें। बाबा ने ज्ञान का मनन चिंतन करना सिखा करके बुद्धि का भटकना बंद करा दिया। जो धक्के खाती थी बुद्धि, अशांत होती थी, दुखी होती थी, बंद कर दिया। तो हमें सारा दिन चेक करना है, सचमुच मेरी मन और बुद्धि बाबा ने जो रेशा खींच के दिया उसके बाहर तो नहीं जा रहे। वाणी के लिए बाबा ने हमें लक्ष्मण रेशा, लक्ष्य तक पहुंचने वाली रेशा खींच के दिया, श्रीमद दिया। ये वाणी जो है ये पट में भी बिठाती है, खट के ऊपर भी बिठा। ये वाणी जो है ये ताऊजी तख्त पर भी बिठाती है, मौत के तख्ते पर भी बिठाती। इसीलिए ये जो वाणी है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सत्य बोलो, असत्य नहीं बोलना कभी भी। क्योंकि तुम सच्चे बाबा के बच्चे हो। सबसे प्रिय बाबा को सत्यता है, सत्यता ही पवित्रता है। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले नहीं, हम ब्रह्माचारी है, ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाले, फॉलो करने वाले। तो हमारी वाणी कहां तक सत्य है? आप एक झूठ बोलेंगे और झूठ छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना, आपको कोई फांसी पर नहीं चढ़ाएगा सच्चा बोलेंगे। बाबा ने मर्यादा खींच के दिया। बाबा ने कहा कम से कम बोलो। क्यों कम बोलो? क्योंकि बोलने से एक तो आत्मा की शक्ति जाती है, ज्यादा बोलने से मुख भी दुखता है, शरीर की भी ताकत जाती है, डबल शक्ति जाती है। इसीलिए कम बोलो। पर हम क्या समझते हैं? सामने वालों को समझता नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोलते। बाबा कहता है इकोनॉमी करो, शब्दों की इकोनॉमी करो। कोई कोई कहते हैं बहन जी हम ना बहुत कम बोलते हैं। बोलते ही नहीं, हम तो सारा समय नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसा बोलेंगे सामने वाला जन्म भर रोता रहेगा। इतना कड़वा बोलेंगे नहीं। बाबा ने कहा मीठा बोल, कड़वा नहीं बोलना। बोल का मतलब क्या है? बोलो, आप संधि विच्छेद करो, बोलो, बो प्लस लो, बो मना बीज बो। आज हम बोलते नहीं है परंतु हम बीज बोते हैं। किस बात का बीज बोते हैं? अच्छे और बुरे का बीज बोते हैं। अगर हम कड़वा बीज बोएंगे तो कड़वा ही फल मिलेगा, अगर मीठा बीज बोएंगे तो मीठा ही फल मिलेगा। इसीलिए हमारे को हमेशा क्या करना है? कम बोलना है, मीठा बोलना है, सोच के बोलना है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये बड़ा महान अंतर है। अज्ञानी कर्म करके पछताता है और ज्ञानी जो है कर्म करने के पहले सोचता। तो इसीलिए हमें अपनी वाचा के ऊपर, वाणी के ऊपर हमारे को पूरी कंट्रोल रखना। उसके बाद हम देखते कर्म। कर्म के लिए बाबा ने कौन सी मर्यादा खींच के दिया? समझ में आ रहा है या कठिन लग रहा आप लोगों को? ठीक है, कर्म के ऊपर बाबा ने कौन सी हमारे को मर्यादा खींच के दिया? सुख दो सुख लो। हर एक व्यक्ति औरों को सुख देवे, सुख देने का लक्ष्य रखता है, सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए। परंतु सामने वाला अगर दुख देता है तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेता है, उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया इसीलिए मैं दुखी हूं। अरे उसने दुख दिया, तुमने लिया क्यों? हम जबकि दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं तो ना हमको किसी को दुख देना है, ना कभी किसी से दुख लेना है। आज देखो ये ज्ञान कितना ऊंचा ज्ञान है, परमात्म ज्ञान। ये परमात्म ज्ञान जिसको इंटरेस्ट नहीं आप जबरदस्ती दे सकते, तो फिर कोई दुख देता है जो थर्ड क्लास चीज है, उसको आप स्वीकार कैसा कर लेते? वो क्या हमको जबरदस्ती दे सकेंगे? नहीं दे सकते। तो बाबा ने हमें ये मर्यादा खींच के दिया है कि तुम्हें बच्चे किसी को दुख देना नहीं है, किसी से दुख लेना नहीं। सुख दो सुख लो। कर्मों के ऊपर ध्यान देने के लिए बाबा ने क्या कहा बच्चों को? जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करें। ऐसा नहीं जैसा कर्म और करेंगे उनको देख के हम करेंगे, नहीं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उसके लिए अंतर्मुखता की गुफा चाहिए। ये जो मुख है इसके अंदर जो भी कर्म इंद्रियां हैं इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल चाहिए। मेन तो हमारी यही कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की कर्म इंद्रियां हैं, शरीर की ये कर्म इंद्रियां मुख है, आंख है, कान है, भ्रुकुटी में यहां राजा बैठता है, अपना कंट्रोल रखे उसकी। बाबा ने इसके लिए क्या स्लोगन दिया, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है, बुरा मत सुनो, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसी हमारी दृष्टि हो जाती। सामने वाला आएगा उसके लिए कुछ सुना हुआ होगा, उसी दृष्टि से उससे देखेंगे, उसी दृष्टि से उससे बोलेंगे, देखेंगे ही नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं ना। किसी की कमजोरी देखी नहीं, किसी की कमजोरी सुनी नहीं तो दिखाई भी नहीं पड़ेगी, सुनेंगे तो दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए परचिंतन बंद करने को बोला ना बाबा। देखो ये कान कितने इंपॉर्टेंट से हैं। स्कूल में बच्चे जब भी गलती करते टीचर क्या पकड़ता है, इतने इंपॉर्टेंट है ना। जब कोई भूल करते हैं तो क्या पकड़ते हैं, कान पकड़। बाबा कहता है ये जो कान है इनको सोने के बनाओ, सोनी कान बनाओ, शेरनी का दूध हमेशा सोने के बर्तन में रहता। सोनी कान बनाना मना पवित्र कान, हमेशा पवित्र बातें ही इन कानों में जाने दो। आप देखो कभी शहर में रेड्स पड़ते हैं, गमसान होता है, मार्केट में जाके देखेंगे तो सबसे पहले क्या बंद करते हैं, क्या बंद कर, फटाफट दुकानों की शटर गिरा देते हैं, बरोबर, दुकानें बंद होती हैं। तो बाबा भी कहता है ये दुकान माना दो कान, दुकान माना दो कान, क्योंकि ये जो दुकान है ना इनको दरवाजा नहीं है। आज मेरे को नहीं बोलना होगा तो दरवाजा बंद हो सकता है, नहीं देखना होगा तो दरवाजा बंद कर सकते हैं, इनको कान दरवाजा, दोनों खुले। इसीलिए मुझे अंदर से दरवाजा लगाना पड़ेगा। इन कानों के द्वारा हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते, कच्चा माल, बुरा सुना कच्चा माल ले लिया फिर फैक्ट्री में भेज दिया, मनसा को फैक्ट्री चालू कर दिया, रॉ मटेरियल ही नहीं इकट्ठा करो तो तुम्हारी फैक्ट्री आप ही बंद हो जाएगी, होगी नहीं होगी। इसीलिए इसके ऊपर पूरा जाप्ता चाहिए हमारा, जाप्ता मीन्स कंट्रोल। मुझे बुरा सुनना नहीं है, बाबा कहते हैं परचिंतन नहीं करो, कहते हम तो नहीं करते परचिंतन, पर कोई सुनाता है तो सुनना पड़ता। अरे क्यों सुनेंगे हम, उनको बोलो रॉन्ग नंबर है जाओ दूसरी तरफ, अपना समय अपना स्वास्थ्य अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर ले। तो हमारे को कभी इस मुख से भी हमारे को कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं बोलने। बाबा हमेशा कहते थे, बाबा की एक मुरली बहुत अच्छी चली थी अव्यक्त बाबा, किसी किसी को बात करेंगे ना टांट मारेंगे, समझते हो ना टांट मारना। बाबा कहता था टांट मारना माना पीछे से उसको पत्थर मारना है, उसको लगेगा बेचारे को जख्म हो जाएगा ना, तो ये पुण्य है पाप है, इसीलिए कभी भी किसी को टांट नहीं मार। कुछ भी बोलना प्रेम से सीधा बोलो ना, टांट क्यों मार। ये आंखें बहुत चंचल हैं, इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, रूहानी दृष्टि बनानी। देखना है तो किसको देखो, आत्मा को देखो। बाबा कहता है तुम किसी से भी बात करो, बुरुकुटी में देख के बात करो। आप कहेंगे आंखों को, अरे आंखें और ये तो बाजू बाजू में दोनों भी दिखाई पड़े। तुम देह को देखते क्यों है? आत्मा को देखो ना, आत्मा को देख के बात करो, अभ्यास करो आत्माभिमानी बनने। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। दृष्टि खराब नहीं हो, दृष्टि चंचल नहीं हो। इस दृष्टि को गुणग्राही दृष्टि बनाओ, क्योंकि हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। ये मर्यादा है हमारी, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है, इसीलिए अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाना है। सब में से हमको गुण देखने हैं, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। वो बुरा देखना है, बुरा देखना मना अवगुण देखना। अवगुण अच्छा है क्या? अच्छी चीज है, बुरी चीज है, इसीलिए तो अवगुण है ना। अगर आपको सदैव खुश रहना है, हर्षित रहना है, तो हंस मुखी बन जाओ। हंस क्या करता है? नीर क्षीर को अलग कर डालता है, पानी को और दूध को अलग कर डालता है, मोती को और पत्थर को, कंकर को अलग कर डालता है। तो उसी प्रकार अगर सदैव हर्षित रहना है, तो सभी के गुण रूपी मोती चुगो, अवगुण रूपी पत्थरों को अलग करते जाओ। तो जिनकी गुणग्राही दृष्टि होती है वो सदैव खुश रहते। आप किसी के भी गुण देखेंगे तो खुशी होती है ना, प्यार आता है उसके लिए। अवगुण देखेंगे तो क्या आता है? नफरत आती। हम क्यों दूसरों में अवगुण है? हम क्यों अपना नुकसान कर रहे देख करके? हम अपनी दृष्टि को क्यों खराब कर रहे? हम क्यों नहीं गुणग्राही दृष्टि करें? हमेशा कहा जाता है आप जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। इसीलिए हमें सब में से क्या देखना है? एक तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, दूसरा हमें गुणग्राही दृष्टि से देख। ठीक है, ये बाबा ने हमको मर्यादा खींच के दिया है। चेक करना हम सारा दिन ये करते हैं कि नहीं करते हो, चेक करना। बाबा ने हमें ये भी बताया कर्मों के लिए कि किसी में अवगुण है। तुमने अवगुण देखा और चार लोगों को सुनाया, फायदा क्या हुआ? अवगुण माना कचरा हो गया ना, गंदगी हो गई ना। गंदगी कौन फैलाता है? तुम परमात्मा के बच्चे हैं ना, तुम्हारा ये है क्या काम? तुमको कभी भी किसी के अवगुण वर्णन करके अपना मुख खराब नहीं करना। एक दूसरे से संबंध संपर्क में आते हैं ना हम, संबंध संपर्क में, सेवा के फील्ड में आते हैं। एक दो के साथ संबंध होता है। आप लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में सब रिश्तेदार होते हैं, सब कुछ होता है। तो हम जब एक दो के संबंध संपर्क में आते हैं, तो उस समय हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा कभी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, नहीं मुझे क्या करना। और जब ईश्वरीय परिवार में कभी भी ये हमारा नियम है, ये हमारी मर्यादा है, कभी भी आपस में पैसे का व्यवहार नहीं करना। एक दो को देते हैं ना पैसे, बोले मेरे धंधे के लिए मेरे को इतना दे दो, वो बोलेगा मेरे धंधे के लिए जरा मदद कर डाल। इस पर से हमने देखा है जब ही एक दो से पैसे का व्यवहार करते हैं, अपने नियमों में लिखा हुआ है, जो बोर्ड है ना हमारा उसमें लिखा हुआ है कि आपस में कभी पैसे का व्यवहार नहीं करना। तो समझो उसने, समझ में आ रहा माताओं को, उसने समझो एक दो को इन्होंने पैसा दिया, फिर उसे वो रिटर्न नहीं कर सकता है इन दिस सर्कमस्टेंस, तो क्या करेगा, क्लास में आना छोड़ दे। क्या ये फायदा किया, सर्विस किया, डिसर्विस किया? भाई क्यों नहीं आता है, मैं दे ही नहीं सकता हूं तो नहीं आता है। कोई तो नफ़रत होते हैं, आते भी रहेंगे देंगे भी नहीं, तो उसको देखेगा तो संकल्प चलता रहेगा, देखा मैंने इसको पैसा दिया था आज तक नहीं दिया ऐसा पैसा, ये क्या हुआ? पर बाबा ने कहा ना, तुमको किसी से लेने देने का हिसाब नहीं बनाना है, संगम युग पर हमको नया हिसाब किताब बनाना नहीं है, पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। अरे 63 जन्मों का इतना हिसाब किताब है, नाक में दम आ गया उसको चुकतू करते करते, और नया हिसाब किताब क्या बना रहे यहाँ बैठ के। हमारी माताएं ना बड़ी भोली भाली होती हैं। क्या हुआ, मैं एक जगह पर गई तो वो एक दिन अपनी लड़की को ले आई क्लास में, लेके आई लड़की, मेरे को बोला बहन जी मेरी लड़की कैसी दिखती है। मैं बोला मैं मेरे को क्या उससे शादी करनी है क्या, कैसी दिखती हा? मेरे को क्या लेना देना है तुम्हारी लड़की कैसी भी दिखे, नहीं नहीं पर अच्छी लग रही है ना, मेरे को समझ में नहीं आया। और पुरानी माता हा? मैं बोला इसका तो क्या दिमाग खराब हो गया क्या, क्या हो गया? तो फिर क्या हुआ, दूसरी माता आई, उसने देखा उसको पसंद आ गई लड़की, उसके लिए लाया था, उसको पसंद आ गई, बहू बना लिया उसको, समझा? तो ये धंधा यहाँ क्यों कर रहे तुम, ये धंधा इधर करने के लिए आते हैं क्या, तेरी लड़की मेरा लड़का, मेरी पोतरी तेरा पोतरा, हाँ? ये जो तुमको शादियां रचानी है ना, बाहर जाके रचाओ, इधर नहीं रचाना। फिर क्या हो जाता है, हमेशा ये ध्यान में रखना, दूर बाज खुश बाज, नजदीक गए तो लड़ाई होगी तुम्हारी, और फिर जब संबंध में आ जाते हैं ना, ईश्वरीय संबंध गया ओम शांति, आप उसमें झगड़ा चालू, क्या किया भला, हमारे से भी पसंद कराते हैं, अच्छी लगती है कि नहीं। इतनी वंडरफुल माता है हमारे, भोली भाली, मन में कुछ नहीं होता है भोली, पर भोले ऐसा भी भोला नहीं होना चाहिए ना, नुकसान हो जैसे। तो यहाँ ये नए संबंध नहीं जोड़ना, समझा, ये ध्यान में रखना, ये संबंध नहीं है, ये बंधन है, ये ईश्वर से बेमुख करने वाले, सन्मुख करने वाले नहीं है। भोले तो होते हैं ना वो तो, अरे एक एक बात सुना मैं आपको, क्या वंडरफुल हो। तो इसीलिए हमारे को हमेशा संबंध संपर्क में आते हुए, हमारे को एक दो की विशेषताएं देख करके, एक दो के गुण देख करके, एक दो को आगे बढ़ाने का है, किसी को भी कभी भी पीछे खींचने की कोशिश मत करो। आज समझो कोई व्यक्ति, अब ये है, ये आगे जा रही है, मुझे इसको पीछे करना है, पीछे खींचना है, अभी इसको पीछे करने के लिए मुझे कहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, आगे उसके पीछे, मैं इसको खींचेगी ये 2 कदम पीछे आएगी तो मैं 3 कदम पीछे जाएगी, 4 कदम, बरोबर, नुकसान किसका हुआ? आज देखो कोई आगे जा रहा है, आप उसको आगे खींच रहे हैं, आप कहाँ खड़े रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे, वो 2 कदम आगे आएगी तो मैं 4 कदम आगे जाएंगी, मेरा फायदा हुआ? इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं पहले आप करो, ये हमारी मर्यादा है, पहले आप, दूसरों को आगे जाने दो ना, रास्ता रोक के क्यों खड़े हो तुम, जाने दो दूसरों, खुद भी नहीं जाने का डॉग इन दी मेंजर, खुद घास नहीं खाने का और गाय को भी नहीं खाने देने का, ऐसा हो जाना, जाने दो, मदद करो और ही कोई आगे जाता हो कुछ करता हो, तो बाबा ने ये मर्यादा हमको खींच के, हमारी मर्यादा ईश्वरी कुल के, ब्राह्मण कुल के, वो मर्यादा कभी नहीं तोड़नी चाहिए। और हमारे को हमेशा एक दो से, हम स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट, बस हमारा इतना ही रिश्ता है, और कोई रिश्ते नहीं हमारे। कोई किसी को माँ बना रहा, कोई किसी को बाप बना रहा, अरे यहाँ माँ बाप का एक को बना रहे पड़े ना वो तो दुनिया। करते बोलते ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, अरे ये माँ और बाप है तुम्हारी, ये कहां से? संगम युग, ये सब संगम युग में सबसे बड़ा परिवार संगम युग पर है, और सबसे कम रिश्ते संगम पर। बेहद का परिवार संगम पर है, कितना बड़ा परिवार है। सतयुग में तो दो ही बच्चे होते हैं, कलयुग में थोड़े ज्यादा हो गए और क्या है, परंतु यहाँ देखो कितने बच्चे बाबा के। पर संबंध कितना है हमारा, कौन सा संबंध है? भाई और बहनी से भी है, इससे और कोई संबंध है? सतयुग में तो संबंध होते ही नहीं है ज्यादा, दो ही जने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सतयुग में जाना मासी का घर नहीं है। मासी होती है क्या वहां? मासी होगी? नहीं होती है ना, इसीलिए बोलते हैं मासी का घर नहीं है सतयुग में। या हमारी माता आएगी ना, हमारे को परिचय कराएगी, ये मेरे फलाने की फलानी लगती है, उसकी वो लगती है उसकी, अरे मेरा क्या जावे, तेरी कोई भी लगने नहीं। कितने लंबे चौड़े परिचय देते हैं उसका बैठ करके। इसीलिए जितना हो सके अभी शॉर्ट करो, अभी वापस घर जाना है अपने को, जहाँ रहना नहीं है। हाँ, बाबा ले जाने के लिए आया है, अभी जो बुद्धि फर्टाइल हो गई है उसको अभी इकट्ठा करो, बाबा के साथ लगाओ। इधर उधर क्यों भटका रहे फालतू पकड़ का? बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं सिखाई हैं, जो हमारे बड़े हैं उनका हमेशा रिगार्ड रखो, लौकिक में चाहे अलौकिक में, हमेशा उनका रिगार्ड रखना तुम्हारा काम। जो हमारे साथ वाले हैं, हम शरीक हैं, उनको रिस्पेक्ट दे के चलो। जो हमारे से छोटे हैं उनको प्यार करो, ये हमारी मर्यादा है। इसीलिए बाबा कितनी बारी बाबा की मुरली में आता है, बात करने की तमीजी नहीं है, मैं करके तू तू करके बात करते, आप बोलते ही नहीं। आया ना अभी भी बीच में, पिछले हफ्ते में आया था। बाबा कितना सिखाता है, लौकिक में भी बच्चे हैं, उनका फर्ज है माँ बाप की संभाल करना, उनका ऋण उतारना अपने सिर पर से। ऐसा नहीं हम ज्ञानी हो गए तो बस ये कुछ नहीं, और तुमको उन्होंने सृष्टि पर लाया है ना, उन्होंने मेहनत किया है ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा काम है मेहनत का। और रिश्ता नहीं बुद्धि में रखो, मोह नहीं रखो, परंतु इसका मतलब ऐसा थोड़ी उनकी सेवा नहीं करो, कौन करेगा? नहीं तो बड़ों की सेवा करना तुम्हारा फर्ज बनता है ना, उनकी आज्ञाओं पर चलना तुम्हारा फर्ज बनता है। इसीलिए हमेशा बहुत संभाल के चलो, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम होता है। आज देखो बाहर वालों को आप ज्ञान सुनाएंगे ना, लोग बड़ा खुशी से सुनेंगे, घर वालों को सुनाएंगे तो नहीं सुनेंगे। घर वाले ज्यादा नहीं आते किसी के, बाहर वाले लोग आते हैं। क्यों? वो बोलते देख लिया हमने तुम्हारा ज्ञान। छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी अक्कल है। अगर समझो माँ थप्पड़ मारने को आई, देखो मैं दीदी को बताएगा तू थप्पड़ मारती, मेरे को करते क्या नहीं करते ऐसा क्योंकि उनको मालूम है, इनको वहां सिखाते थप्पड़ मारना नहीं, इमाम को थप्पड़ मारना, वहां हमारे गुरु निकलते हैं। अच्छा है ना, हमको सिखाने वाले तो है। इसीलिए अपनी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं के ऊपर चल के मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है हमको। डिग्री भले वहां मिलेगी तुम्हारे को, पर सीखना तो यहाँ ही पड़ेगा ना। इसीलिए एक दो का हमेशा रिस्पेक्ट रखो, एक दो का रिगार्ड रखो, आपस में प्रेम प्यार से चलो, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहो, ये हमारी मर्यादा है। संसार में रहो परंतु संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, समझा? आप संसार में वसो, वसो माना रहो, पर संसार में फंसो नहीं, क्योंकि प्रवृत्ति मार वालों की यादगार क्या है? कमल का पुष्प। कमल का पुष्प फंसा हुआ होता है, न्यारा होता है, तो न्यारा रहना सीखो। देह से न्यारा, देहधारियों से न्यारा, प्यार सबसे रखो पर दिल का प्यार एक से रखो। स्नेह सबको दो परंतु सब संबंध एक के साथ जोड़। बाबा ने ऐसा नहीं कहा संबंध तोड़ डालो, तुम तोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। जो दुख देने वाली बातें थी वो छुड़ाता है हमारे से, अच्छी बात थोड़े छुड़ाता है, अच्छी बातें सिखाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने ऊपर अटेंशन देके चलना, हमेशा अपनी जो भी मर्यादाएं हैं मनसा वाचा कर्मणा इसमें है, हमारे को कभी भी गफलत नहीं करना। ऐसा नहीं सोचो एक करो बोलो दूसरा करो तीसरा, नहीं, हमारी मनसा वाचा कर्मणा तीनों समान होनी चाहिए। जो अच्छा सोचो अच्छा बोलो वो अच्छा करके बताओ, नहीं तो सोचते बहुत कुछ है करने में कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी है मेरे पास, बड़े बड़े वायदे लिखे हुए उसके ऊपर, हम ये करेंगे, हमें बाबा हम अभी संपूर्ण बन के बताएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देखो तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि खुद की चेकिंग नहीं। खुद को चेक करो और अपने को चेंज करो। देखो हर एक के घर में दो चीजें होती हैं, एक होता है आईना मिरर, एक होता है विंडो खिड़की। आईने में किसको देखते हैं? खुद को देखते हैं, मुकड़ा देख ले प्राणी। और विंडो में किसको देखते हैं? दूसरे को देखना होगे तो विंडो के आगे जाना पड़े, अपने को देखना होगे तो आईने में आना पड़े। तो अभी विंडो में देखना बंद करो, ज्ञान के आईने में अपने को देखना चालू करो। मुकड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप मेरा दग्ध हुआ है और मैंने अभी तक कितना पुण्य किया, तो क्या हो जाएगा? स्वचिंतन करने से, स्वदर्शन करने से स्व का परिवर्तन हो। अगर हमको स्व को देखने की फुर्सत ही नहीं है, हम सारा समय विंडो के आगे खड़े होके दूसरे को ही देख रहे क्या कर रहे, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है वो ऐसा, मैंने कोई ठेका थोड़े उठाया है, कौन क्या करता है? और भगवान ने हमको इस सृष्टि के ऊपर क्यों भेजा, क्या बना के भेजा? हम सब कौन है इस ड्रामा के? हम सब एक्टर है ना, इंस्पेक्टर बना के तो नहीं भेजा ना, एक्टर है ना। तो सदैव याद रखो अपने को, अगर जावे ना दूसरे की तरफ दृष्टि तो उस समय ये पॉइंट याद करो कि अरे हमारे को तो एक्टर बनाया है, डायरेक्टर ये इंस्पेक्टर तो नहीं बनाया है, हम क्यों औरों को देखते हैं? कौन क्या करता है ये मेरे को नहीं देखना, ये वो देखता है, क्योंकि वो वर्षा देने वाला है, हम थोड़े देने वाले हैं। संगम युग माना ड्रामा की शूटिंग का समय, जैसा आप अभी कर्म करेंगे वो 5000 बरस के बाद हू बहू रिपीट होगा। तो जिस समय ड्रामा की शूटिंग होती है उस समय देखा एक्टर क्या करते हैं, वो कभी दूसरे को देखते हैं, कितना कॉन्शियस होता है उनको खुद की एक्ट की तरफ कि हमारी एक्ट ऐसी वैसी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो ही रिपीट होती रहेगी। तो इसीलिए हमको भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अभी हमारी ये शूटिंग हो रही है, हमारे को बहुत बहुत खबरदार रहना है, हमारे को स्व परिवर्तन करना है, हमें बाप समान बनना है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। कितना काम दिया है बाबा ने हम, और सिर्फ हमको नहीं बनना है, औरों को बनाना है, बड़ी बात तो ये। सिर्फ अकेले को बनना हुए तो भी ठीक, या एक को बनाएंगे तो क्या होगा, औरों को भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि सबका लक्ष्य क्या है, किसी से पूछेंगे क्या बनेंगे, कहेंगे हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, राजा बनना है, कोई भी प्रजा नहीं बनना चाहता है, कोई चाहता है कि हम प्रजा बने? हाथ उठवाओ देखो, सभी बोलेंगे हम राजा बनना है। राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो राज किसके ऊपर करेंगे आप? प्रजा ही नहीं होगी तो राज किस पर करेंगे, ये तो बताओ। तो प्रजा बनानी है, अर्थात ही हमें सब कुछ करके औरों को बताना है, तभी वो हमको फॉलो करेंगे। तो हमें बहुत बड़ा काम दिया है बाबा ने। बाबा कहता है मैं अकेला नहीं आता हूँ सृष्टि पर, मैं बच्चों सहित आता हूँ। बाबा परम धाम से नीचे उतरता है और हम कलयुग से सत्य संगम युग पर आते, और बाबा के साथ साथ विश्व कल्याण का कार्य करते हैं। हमारा कल्याण हो गया तो पेट नहीं भर गया, हमें सारे विश्व का कल्याण करना है, विश्व की फिक्र करनी है हमें, समझा? हमारी कोई कोई बहनें तो आराम से सोई पड़ी है, उनको चिंता ही नहीं है कुछ, क्या करें बोलो। जिस जिसको नींद आ रही जरा हाथ तो ऊपर करो, है कोई? कौन हाथों पे? इसको नींद आ रही, देखो इतना बोर हो रहा क्या हमारा बोलना आपको? देखो ये ज्ञान की लोरी है, जब भी माँ बच्चों को लोरी देती है ना तो बच्चे आवाज से परे चले जाते। लोरी में कितनी ताकत है, हाँ? माँ आवाज में आएगी, बच्चा आवाज से परे जाएगा। तो ये ज्ञान की लोरी भी सुनते हैं ना, कोई कोई लोरी समझ करके ऐसा ऐसा चालू रहता हूँ। मेरे सामने भी कोई कोई कर रहा है। ये छूट की बीमारी होती है मालूम, ये जो नींद है ना, आलस नींद, ये कौन है मालूम है आपको? नींद को कुंभकर्ण की युगल बोलते हैं। कुंभकर्ण घर में सोता है और युगल को सत्संग में भेजता है कि उसका कल्याण हो जावे, हो जाके सत्संगियों का कल्याण करके आ जा। उनको अपने संग का रंग लगा के आ जाती, हो जाके इतनी होशियार होती है। आप देखेंगे थिएटर में जाते लोग, वहां थोड़े झुटका मारते हैं, इधर झुटका मारेंगे। माया भी बड़ी होशियार है बहुत। चलो अच्छा, मर्यादाएं समझ में आई क्या है? कभी तोड़ना नहीं मर्यादा, मर्यादा तोड़ेंगे तो धर्मराज बैठा है, फिर छोड़ेगा नहीं वो भी, वो फिर हड्डियां तोड़ेगा। इसीलिए कभी भी मर्यादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जावे, परंतु बाबा ने जो करके बताया वो हमको करना। कुछ आपको मेहनत करने की दरकार नहीं है, आप सिर्फ बाबा को फॉलो करो, बाबा के फुट स्टेप के ऊपर फुट रखो, कदम के ऊपर कदम। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, कोई कोई गलियों में घुस जाती है, अरे हाईवे इतना बड़ा पड़ा है, उसके ऊपर चलो। बाबा ने चल के बताया हमको, सिर्फ उसको कॉपी करनी है। बाबा कहता है कॉपी क्या, तुम कार्बन कॉपी करो। अभी तो बोलता है कार्बन कॉपी भी नहीं, फोटोस्टेट कॉपी करो। कार्बन कॉपी में फिर भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है, फोटोस्टेट कॉपी तो हु। क्या तकलीफ है तुमको? उस स्कूल में कोई कॉपी करेगा तो उसको निकाल देते हैं। हमारा टीचर हमको बोलते तुम कॉपी करो, हमको कोई एतराज नहीं, मजे से करो। तो भी करते नहीं कोई उसको कॉपी, अभी क्या करेगा? देखो हम उस बाप के बच्चे हैं जिसने कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ी हमारे ब्रह्मा बाप ने, तो हम कैसे तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते। नशा रखो, ईश्वरीय जन्म का नशा रखो। कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ठीक है?